میشن. جلو برد گریب روش بره. آبیت دوانی بابا کی کیا کہا بابا نے؟ 14 تاریخ کی سامان کیا کہہ دیے بابا نے ہم
کو؟
بابا نے کہا دل کے دیپک نینو کے نور اور دل میں سمائے ہوئے جو یاد کرتے ہیں وہ. اور باپ کے نینوں میں کون سمایا ہے؟ جو یاد کرتے ہیں. اور کن کے نینوں میں باپ سمایا ہوا ہے؟ جو یاد کرتے ہیں دونوں طرف سے. جو یاد میں ہیں, جو یاد میں ہیں جن کے نینوں میں باپ سمایا ہوا ہے, اور جو یاد کرتے ہیں وہ باپ کے نینوں میں سمایا ہوا ہے. اور کیا کہا؟ یہ ملن کیسا ہے؟ بھگوان کا اور اس کے بچوں کا ملن کیسا ہے؟ میٹنگ کیسی میٹنگ ہے یہ؟ اچھے اچھے شبد بابا نے پریوگ کیے ہیں, ونڈرفل, ادبھت اور ویلیوبل, مولیوان. یہ محفل کیسی ہے یا ملاقات کیسی ہے؟ بڑی سندر. بھگوان کے شبد دیکھو کیسے ہیں. بھگوان کس کو دیکھ رہے ہیں؟ بچوں کے شرنگار کو دیکھ رہے ہیں. بچوں کے شرنگار کو دیکھ رہے ہیں. یہ میٹنگ بڑی ہے, ویلیوبل ہے, ونڈرفل ہے, بڑی سندر ہے. الگ الگ شبد بابا نے پریوگ کیے. واہ بچے واہ, اور واہ بابا واہ. یہ تو گیت کا ہے. کام کیا کیا دیا؟ سدا کال کا پرشاد. اور ایک اچھا کام دیا ہے. مہاواکیہ کون سے تھے؟ پاورفل مہاواکیہ تھا مرلی میں. جہاں باپ ہے وہاں کوئی بھی بات آ نہیں سکتی. تو جہاں بھگوان ہے وہاں پر کوئی بھی بات نہیں آ سکتی. چنتن کا وشے یہ ہے کہ کون کون سی باتیں وہ ہے جو ہمارے اور بابا کے بیچ میں آ جاتی ہے. بابا نے کہا ہے کہ جہاں باپ ہے وہاں کوئی بھی بات آ نہیں سکتی. اس کا دوسرے ارتھوں میں جہاں بات ہے وہاں پر باپ نہیں ہے, وہاں باپ بھول جاتا ہے. ایک تو یہ مہاواکیہ تھا. دوسرا مہاواکیہ مرلی میں تھا کہ اب خوش نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے. اگر کوئی شکشک اپنی ککشا میں آئے اور وہ بار بار ادھارن کے طور پر کوئی ایک ٹاپک پر سمجھاتا ہے, ڈسپلین, ششٹاچار, بار بار اسی ٹاپک پر سمجھاتا ہے, اس کا کیا ارتھ ہوا؟ شاید بچوں میں وہ کم ہے یا نہیں ہے. بابا ابھی بھی ایک ہی ٹاپک پر سب سے زیادہ سمجھاتے ہیں. کون سی؟ خوشی, خوش رہنا, خوشی بانٹنا. اب خوش نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ تو شاید سمبھوتا سبھا میں جو بیٹھے ہیں ان کے من میں خوشی کم ہے. کتنے سالوں سے بابا یہ ایک ہی تھیم ہے, بار 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 خوش رہنا ہے, خوش کرنا ہے, خوشی بانٹنی ہے, خوشی نہیں ہے. تو یہ دو سب سے مہتوپورن باتیں بابا نے مرلی میں کہی ہے. سب سے پہلا تو جہاں بات باپ ہے وہاں پر کوئی بھی بات آ نہیں سکتی. ہم یہ چنتن کریں کہ ایسی وہ کون کون سی باتیں ہیں جو آ جاتی ہے اور خوشی کو گم کر دیتی ہے یا پھر باپ وہاں رہتا نہیں ہے. ایسی کون سی باتیں ہیں جہاں باپ ہے وہاں بات آ نہیں سکتی؟ کون کون سی باتیں اگر آ جائے تو باپ نہیں رہتا؟ کون سی باتیں ہیں؟ سارا ویرتھ کی ویرتھ بہت بڑا ٹاپک ہے, اس کے اندر کا بتاؤ. کام کا بوجھ, تھکان. اور کون سی باتیں وہ ہیں کہ جو آ جائے تو وہاں باپ نہیں رہتا؟ ویرتھ باتیں, ویرتھ دیکھنا, ویرتھ بولنا, ویرتھ سننا, ویرتھ سے سمبندھت سب کچھ. نگیٹو باتیں, ایک دوسرے کی کمی کمزوری کی باتیں, پرچنتن کرنا, پردرشن کرنا, और कल की मुरली संडे की अव्यक्त वाणी मधुबन निवासियों से मुलाकात किए बाबा ने, उसमें मुख्य ये एक ही बात कही है, किसी के भी अवगुणों को, कमजोरी को, व्यर्थ बातों को और बीती हुई बातों को, ये चार बातें कही है, इसको ना देखना है और ना ही इसका सुनना है, ना ही चिंतन करना है, ना चित्त पर रखना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं, फिर सुनते हैं, फिर उसको चित्त पे रखते हैं और फिर उसका वर्णन करते हैं। वर्णन करने से वो बात और फैलती है। तो सबसे मुख्य पुरुषार्थ है, जब हम संगठन में हैं, यहां पर बहुत सी कमियां नजर आती है सबकी, और यहां से व्यर्थ की उत्पत्ति होती है, और जहां व्यर्थ है वहां पर बाप नहीं है। तो हम क्या ऐसा करें कि जिससे सब कुछ देखते हुए भी हमारे मन में व्यर्थ उत्पन्न न हो, क्या पुरुषार्थ करें इसके लिए? देखते हुए नहीं देखने, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, देखते हुए नहीं देखने, ये थीसिस का टॉपिक है, इस पर इतनी बड़ी किताब लिखी जा सकती है। कैसे देखते हुए? दिख तो रहा है परंतु ध्यान नहीं देना, एक, और रहम की भावना रखे, और क्या रखे, शुभ भावना रखे, और क्या रखे, दाता बन के क्या देना है? हम किसी की अवगुण देख रहे हैं, अभी हमारा क्या पोजीशन है? एक तो कहा कि ध्यान नहीं दो, देखते हुए नहीं देखो, और
जैसे बाबा देखते हैं,
जैसे बाबा की दृष्टि है वैसी दृष्टि रखे, बेहद की दृष्टि, ऊंची दृष्टि, और प्रश्न ये है कि किसी के अवगुण दिख रहे हैं, अब हम क्या करें?
वो परवश है, इसलिए शुभावना से,
वो परवश है ये सोचे, ठीक है, और परिवर्तन कर दे। तो एक तो शुभ भावना रखना, ये हो गया, और क्या समझे?
वो भी पुरुषार्थ कर रहा है,
वो भी पुरुषार्थ कर रहा है, अभी तक मंजिल तक नहीं पहुंचे।
हम भी तो अपनी मंजिल पे चल रहे हैं ना,
हम भी चल रहे हैं, वो भी चल रहा है। चलो, उनके प्रति की ये देवकुल की महान आत्मा है, एक तो ये हमने फिक्स कर लिया कि ये महान आत्मा है, भले उसमें कितने भी अवगुण है। कल की मुरली मधुबन निवासियों से मुलाकात, जिसमें बाबा ने कहा कम से कम वो सहयोगी ब्राह्मण आत्मा तो है, संसार की तुलना में तो आगे है, चाहे कितने भी उसमें अवगुण हो, परंतु उसने तीन बातें धारण कर रखी है। सबसे पहला, भगवान को पहचाना, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, चाहे उसमें कितने ही अवगुण हो, कितनी ही कमजोरियां हो, परंतु उसने परमात्मा को पहचान लिया, एक। दूसरा, पवित्रता को धारण किया है, ब्रह्मचर्य को धारण किया है, परमात्मा श्रीमत पर वो चल रहा है, ये उसकी सबसे बड़ी महानता है। तीसरा, उसने अपने जीवन को मनसा वाचा कर्मणा समर्पित किया है, स्थूल नहीं तो मन से तो समर्पण जीवन जी रहे है, ये बहुत बड़ी महानता है। तो ये तीन महानता तो सब में है ही है, चाहे कैसा भी ब्राह्मण हो, या फिर हम ये तीन चीजें सोचे कि ये महान आत्मा है, देवकुल की आत्मा है, और इसमें ये तीन चीजें तो है ही है। अभी हमने जो पहले जो पॉइंट कहे हैं कि देखते हुए नहीं देखना, ध्यान नहीं देना अवगुणों पर, ये समझना ये पुरुषार्थ ही है, ये समझना कि हम भी कभी ऐसे थे, हम भी कभी ऐसे ही तो थे, फिर तो हमने ज्ञान का अध्ययन किया, योग लगाया, समझा, जितनी हम गहराई में गए तब हमको समझ में आया कि ये हमको छोड़ना है। वो आत्मा हमारा ही भूत है, भूतकाल है, जहां वो अभी खड़ी है, इसके लिए उसके प्रति रहम की भावना ही होगी। रेस है ये, इसमें कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, उसके प्रति घृणा भावना हो, नफरत का भावना हो, इस तरह की फीलिंग, निगेटिव भावना हो, या उसकी कमजोरियों को हम फैलाए सब में, उसकी निंदा करें। हिंदी में एक शब्द है निंदा सुख, निंदा सुख अर्थात दूसरों की निंदा करने से प्राप्त हुआ जो सुख है, उसे निंदा सुख कहा जाता है। तो हमारा चिंतन चालू था कि जहां बाप है वहां कोई भी बात आ नहीं सकती, तो बातों में सबसे पहला बोला हमने व्यर्थ, और व्यर्थ का की उत्पत्ति होती है जब हम दूसरों के अवगुणों को, कमजोरी को देखते हैं तब, और व्यर्थ कहां कहां आता है इस ब्राह्मण जीवन में प्रैक्टिकल। हम सुबह उठे, अमृत वेला किया, मुरली सुनी, कर्म क्षेत्र में गए, कर्म किया, फिर योग किया, जितना हो सका यथाशक्ति श्रीमद का पालन किया।
इच्छा हो गई,
बहुत ज्यादा इच्छा है। तो व्यर्थ आने के कई दूसरे भी सोर्सेस है, किसी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा। हमने कुछ किया नहीं है, परंतु यदि जैसे आपने कहा किसी ने कोई गलती कर दी, कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, हाँ, तो वो एक है कि दूसरे आकर हमसे व्यर्थ बातें करते हैं, तो हम क्या करें। शायद हमने कभी उसकी बातें बड़ी ही टेस्ट से सुनी होगी, इसके लिए तो हमारे पास आता है वो, क्योंकि उसने हमको कुछ सुनाया होगा कि ऐसा हुआ, तुमको पता है ये यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है। हमने पूछा होगा और क्या हुआ, और क्या क्या हुआ, तो इंटरेस्ट दिखाया ना, तो एक बार दिखाया तो नेक्स्ट टाइम वो आप ही के पास आएगा, तो वहां से वो एक बात है। दूसरा, अगर हमने किसी को कोई काम दिया, उसने नहीं किया, ठीक से नहीं किया, गड़बड़ कर दी, बिगाड़ दिया, तब हम क्या करें, क्योंकि हमने अगर उसको डांटा, उसको तो योग करना है नहीं, उसको श्रीमत पर चलना है नहीं। अगर हमने डांटा तो हमारी स्थिति डाउन होगी, नुकसान होगा उसका नहीं हमारा, वो तो आराम से जाके सो जाएगा, परेशान हम, तो क्या करें, क्या सोचे। हमने किसी को कोई काम दिया या हमने किसी को कुछ सिखाया कि यह ऐसा किया जाता है, एक बार सिखाया, दो बार सिखाया, चार बार सिखाया, उसके बाद में भी गलती की, अब क्या करें। ये एक बहुत सिंपल सा सिद्धांत है कि हर आत्मा की शक्ति अपने हिसाब से उतनी ही है, उसकी कैपेसिटी ही उतनी है, उससे ज्यादा वो पुरुषार्थ, उससे ज्यादा उसकी बुद्धि भी नहीं है। इस ड्रामा में हरेक की बुद्धि अपनी अपनी है, हम उससे ये अपेक्षा ही ना करें कि वो ये कार्य कर सकता है, हम उसको सिखाएं, जितना हो सके सिखाएं, परंतु हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो एकदम जैसे हमने हमारे समय वो कार्य किया था, हमने कैसे सीखा था, 10 दिन में सीख लिया था, इसको एक साल हो गया अभी तक नहीं सीख रहा है, कोई लगन ही नहीं है सीखने की। तो यहां पर हमको ड्रामा की, हाँ, इंटरेस्ट भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, समझ भी नहीं है इतनी, तो हम इस बात को भी समझ ले ड्रामा की कि हर एक्टर की अपनी अपनी बुद्धि है, या फिर हर एक्टर का अपना अपना भाग्य है, ये उससे ऊंचा स्टेटमेंट है। हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है, कोई माँ बाप अगर सोचे कि मेरा बेटा फर्स्ट ही आया या पहले 5वें ही आया, नहीं हो सकता है, उसकी बुद्धि उतनी है या उसका भाग्य ही उतना है। तो ड्रामा के सूक्ष्म रास को भी बार बार रिपीट करना है कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये हजारों बार हमने सुना है पर परिस्थितियों के समय फिर भी भूल जाता है, चाहे वो ब्राह्मण या गैर ब्राह्मण, बीके या बाहर का कोई, उनके लिए भी, जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भी, उनका भी अपना फिक्स पार्ट है। अगर उनमें इतनी बुद्धि होती तो बाप को नहीं पहचान लेते, बाबा को जाना ही नहीं है, यहां रह रहे हैं, संसार का सबसे बड़ा तीर्थ, इससे बड़ा तीर्थ कोई है नहीं, विश्व की सारी आत्माएं यहां आ रही है, फिर भी भगवान को नहीं पहचाना जाना, और हमने कहां थे और कहां पहुंच गए जाना। अगर वो जान जाते तो अभी भगवान के बच्चे होते। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो ज्ञान में नहीं है, उनकी बुद्धि ही उतनी है, उनसे उतनी ज्यादा अपेक्षा भी नहीं करना है, चाहे वो हमारे जूनियर ही क्यों ना हो, उनसे फिर भी नहीं करनी, क्योंकि अगर हम किए उनको तो कुछ नहीं होगा, हम डिस्टर्ब होंगे। अपने अंदर दादी जानकी ने क्लास में कहा था, डिस्टर्ब न होने की शक्ति को धारण करो, डिस्टर्ब न होने की शक्ति को धारण करो। डिस्टर्ब हम तब होते हैं जब हमने किसी को कुछ कहा उसने नहीं किया, या किसी से हमने ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी और वो फुलफिल नहीं हुई, तो हम डिस्टर्ब होते हैं। और कहां कहां व्यर्थ आता है हमारे प्रैक्टिकल जीवन में, सुबह से लेकर तो रात तक, जो बाबा और हमारे बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाता है, वो चीज, वो बात, पास की बातें, बीती हुई बातें, जो स्मृतियां हैं, क्योंकि आत्मा में सब कुछ रहता है, परंतु उसमें भी एक है, स्विच है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, कल की अव्यक्तवाणी संडे की मुरली, उसमें भी अचानक मुरली चलाते चलाते लाइट चली गई तो बाबा ने सीधा मुरली उसके ऊपर चलाई, एक स्विच दबाओ तो बाबा की याद और देह के संबंध ऑफ, वो स्विच ऑफ हो जाएगा, ये स्विच ऑन हो जाएगा। तो स्मृति जो है ये एक जैसे स्विच है। हम अगर यहां हैं, कई सालों से पवित्र जीवन जी रहे, परंतु यदि एक विकार का संकल्प आ गया तो तुरंत वो सब कुछ हो जाएगा जो तब हुआ था, चाहे वो विकार का संकल्प, चाहे वो निगेटिव का संकल्प, चाहे नफरत, घृणा, ईर्ष्या, इनमें से कोई भी एक संकल्प, लोभ का, क्रोध का। हम यहां बैठे हैं बहुत ही योग अवस्था में बाबा के सामने, परंतु हम अगर जानबूझकर अगर ट्राई करें कि एक संकल्प जो तब आया था किसी को डांटते समय, वो अगर लाए तो वही शरीर में सब कुछ चेंजेस आने होने लगेंगे। संकल्प जैसे एक स्विच है, जैसे कोई माता है सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि बहुत विरोध था, मधुबन में आ गई और मधुबन में सेवाएं कर रही और अचानक रोटी बेलते बेलते उसको अपने बेटे की याद आ जाए, अचानक अभी बाबा की याद में भट्टी कर रही है, लंबा लंबा बहुत बड़ा बड़ा चार्ट है, पर एक संकल्प आ गया बेटा और तुरंत आंखों से आंसू आ जाएंगे क्योंकि स्वरूप तुरंत बन जाता है। स्मृति आते ही उसका स्वरूप बन जाता है, स्मृति और स्वरूप का इतना संबंध है। तो पुरानी जो बातें हैं, बाबा क्या कहता है, बार बार पुरानी को भूल जाओ, बीती सो बीती कर दो, कुछ भी याद नहीं आए तुमको, वो पुराना जीवन था, ये नया जीवन है। द्विज, ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है संस्कृत में, द्विज अर्थात दूसरा, सेकेंड लाइफ, सेकेंड बर्थ, मरजीवा, जन्म, ये सारे शब्द बाबा ने कहे हैं। अगर फिर भी वो बातें याद आती है तो उसके लिए हमको खास पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो सारी बातें उनको न्यूट्रलाइज करने का और नई स्मृतियों को स्थापित करना पड़ेगा। पुरानी स्मृतियों को डिलीट करना है, नया वहां आ जाए। एक कार्य है कि अपने मन को सबसे पहले तो बिजी रखना है, इतना बिजी रखे कि हमारे लिए कोई टाइम ही नहीं है कोई दूसरी बात सोचने का, करने का। और पुरानी बातें आती भी है तो उनको दबाना नहीं है, उनको साक्षी होकर देखना है, उसके ऊपर सोचना है कि मेरे से ये गलती हुई थी परंतु अब मैं दृढ़ संकल्प करता हूं कि वो गलती फिर नहीं होगी। वही तुरंत उसी क्षण ये संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहां संकल्प नहीं किया तो वो स्मृति एक मिनट से पांच मिनट, पांच मिनट से पंद्रह मिनट और एक घंटा तक चलेगी और एक घंटे में कुछ ना कुछ असर तो छोड़कर जाएगी। केवल संकल्प, पुराना, पुरानी यादें, क्योंकि पुराना कहीं कहीं जाता नहीं, यही है आत्मा में सब कुछ है, सबकॉन्शियस माइंड में, केवल उसको एक ट्रिगर चाहिए, एक ट्रिगर मिल गया कि वो बाहर आ जाएगा सब कुछ। चाहे 10 साल से ज्ञान में है पर 10 साल पहले एक बहुत बुरी घटना हुई थी जिससे हम बहुत दुखी हुए थे, बहुत उदास हुए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, परंतु वो बात अगर फिर से याद आ गई तो वही अवस्था फिर से क्रिएट हो जाएगी। इसके लिए उन पर भी एक काम करना है, हमारा जो तीव्र पुरुषार्थ चालू है उसके साथ साथ ये भी कार्य अंदर से चालू रहे कि पुरानी कोई भी बातें आए तो उसके सामने हम एकदम बलहीन, शक्तिहीन ना हो जाए। सारा ज्ञान और योग एक तरफ रह जाता है, इतने शक्तिशाली वो बातें हैं, ज्ञान योग समाप्त हो जाता है। जैसे ये प्रश्न उठ जाता है कि ये ज्ञान योग है कि नहीं है, हम ज्ञानी हैं या नहीं है, इतने शक्तिशाली कुछ कुछ संकल्प है। तो उनको, उनकी जो पावर है वो धीरे 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 कम कर देनी है, योग के कुछ प्रयोग करना है उनके ऊपर। जैसे मंदोदरी रावण को कहती है कि तुमको अगर सीता चाहिए ही तो तुम तो मायावी हो, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तू राम का वेश अवतार भेष क्यों नहीं धारण कर लेते और सीता के पास जाओ, ये आइडिया देती है वो उसको। तो रावण ने क्या कहा होगा, रावण कहता है कि जैसे ही मैं श्री राम का चिंतन करता हूं और उस स्वरूप में टिकने का अभ्यास करता हूं, ये उसको तो उसके पास जाने का क्या, मेरे मन में तो संकल्प भी नहीं आता है उसका, इतनी पवित्रता मेरे मन में उत्पन्न हो जाती है केवल संकल्प से कि मैं राम हूं, मतलब सम्मान ले लिया उसने जैसे कि मैं श्री राम हूं। ये राम का संकल्प ही उसके मन में इतने ऊंचे श्रेष्ठ विचारों से भर देता है कि ये तो एकदम ही छोटा लगता है उसको, इसके लिए मैं तो नहीं करूंगा, उसका अहंकार भी है ना बीच में। तो संकल्प की ही बात है, स्मृति की ही बात है। तो पुराना जो भी इतना भरा हुआ है और रोज अमृत वेले इस पुराने को जलाना है, भस्म करना है, नष्ट करना है, ये हमारा एक आंतरिक पुरुषार्थ है। बाहर से हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, परंतु पुराना है, चलो इस जीवन का कुछ नहीं तो पूर्व जन्म का तो है, बहुत माल भरा है अंदर, उनको भी हमें नष्ट करना है। नष्ट करना है अशरीरी अवस्था में, जैसे ही हम अशरीरी बनते हैं, किरणें लेते हैं, पुराना डिलीट होते जाता है, दूसरी और कोई विधि नहीं है। श्रेष्ठ चिंतन से और श्रेष्ठतम योग से, ये दो चीजों से आत्मा में जो कीचड़ा है वो नष्ट होगा। तो पुरानी बातें याद करते हैं तो व्यर्थ आता है, और कहां से व्यर्थ आता है? जो बाप और हमारे बीच में खड़े हो जाता है और हम बाप से दूर हो जाते हैं। कौन सी वो बातें हैं? आप जहां बाप है वहां बात आ नहीं सकती, और जहां बात है वहां बाप नहीं है। और कौन सी बातें कि जिसको हमको लगता है वो आते ही हम दूर हो गए बाबा से, सारे विकारों की सारी बातें आ जाएगी। तो उसमें एक अटैचमेंट, चाहे वस्तु चाहे व्यक्ति, एक दूसरे प्रकार का भी अटैचमेंट होता है, दुख से अटैचमेंट, पीड़ा दुख। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें समाई हैं दुख वाली कि हम उन दुखों से भी अटैच हो चुके हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते उन दुखों, इतने अटैच हो चुके हैं कि वो दुख, जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, सबसे अच्छे से बातें करता है, एक दिन अचानक किसी ने आके कुछ कह दिया, गलत व्यवहार कर दिया। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, पर उसने जो बात कही वो ऐसी पकड़ ली जैसे कि वो इंतजार में था, कौन मुझे कुछ कहे और मैं दुखी हो जाऊं। ये व्यंगात्मक ढंग से, हाँ मतलब धारण करने का, ले लेने का, समा लेने का, ये जो संस्कार है, पकड़ना, उसके ऊपर सोचना, चिंतन करना और उसका विस्तार करना और उसमें रमन करना और खुद को दुखी बना देना, ये भी एक संस्कार ही है, बड़ा ही सूक्ष्म संस्कार है। दुख से प्रीत, जैसे इंतजार ही कर रहे थे कौन मुझे, अब तक सबने अच्छा कहा, उसकी तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर किसी एक ने आके कह दिया, कुछ तो कह दिया, ये ऐसा नहीं करो, ये वैसा करो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, या किसी ने आकर श्रीमती सुना दी, यहां आते हो ऐसा नहीं करना चाहिए यहां, तो फील हो जाता है, तो वो पकड़ लेती है आत्मा और उसमें दुखी हो जाती है। ये भी है दुख को ग्रहण धारण करने का और पकड़ के रखने का। तो ये एक, ये सूक्ष्म, ये अलग प्रकार की अटैचमेंट है, एक तो व्यक्ति वैभव वो हम सबको पता है, पर दुखों को पकड़ के रखना, कोई पुराने संस्कार को पकड़ के रखना, ये भी एक अटैचमेंट ही है। हाँ, वेरी वेरी, बहुत सूक्ष्म महीन अटैचमेंट, आसक्ति, तो वो भी एक है। और व्यर्थ कहां आता है जीवन में? इस श्रेष्ठ पुरुषार्थी जीवन में, ब्राह्मण जीवन में नहीं, केवल जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ के मार्ग में, जिन्होंने लक्ष्य रखा है कि हमको हमारा ज्ञान भी बढ़ाना है, हमको हमारा योग का चार्ट भी बढ़ाना है, हमारी स्थिति भी बढ़ जानी चाहिए, जो एक हफ्ते पहले जो स्थिति थी आज वो स्थिति उससे आगे चाहिए। एक चित्र है बहुत अच्छा, एक जानवर है, चाहे तो हिरन है, उसमें दिखाया है उसको बांध लगा हुआ है, और बांध लगा हुआ है तो एकदम दुखी है और एकदम पीड़ित है, चिल्ला रहा है। एक दूसरा चित्र दिखाया हुआ है, वही हिरन 10-15 बांध लगे हुए फिर भी स्थिर है, कुछ हो नहीं रहा है, ये मैच्योर्ड स्टेज है। पहले अवस्था ऐसी थी कि एक बांध लगा तो दुखी, अभी 10 बांध लगे हुए है, नाजुक स्टेज, डेलिकेट स्टेज, फीलिंग की अवस्था, फीलिंग आना, अभी बहुत सारे बांध लगे हुए है। ये है कहीं आया था, तो इतने बांध लगे हुए फिर भी अडोल है। और जीवन में हम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि परिस्थितियां न आए या चुनौतियां न आए। जिसके जीवन में कोई परिस्थिति नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, उनकी उन्नति भी नहीं होती। जिनके जीवन में जितनी ज्यादा परिस्थिति, जितनी ज्यादा चुनौतियां, जितने ज्यादा सामना करना पड़ता है, संघर्ष जितना ज्यादा है, उतने ही वो अधिक बलवान है, अधिक शक्तिशाली वही है जिन्होंने सब कुछ सामना किया है। संसार में, भारतवर्ष में जितने सम्राट बने हैं, वो सब ने इतना कुछ सामना किया है, उसके बाद ही वो सम्राट बने। तो जो जितना ज्यादा सहन करता है, जितना ज्यादा संघर्ष करता है, तभी उतना उसी अनुपात में, उसी मात्रा में, उसी प्रपोर्शन में वो शक्तिशाली बनता है। इसके लिए बाबा ने कहा ना, परिस्थिति आई उनको ऐसा मत समझो, पाठ पढ़ो, परीक्षा का पेपर समझो, और वो जैसे कुछ है नहीं है, पेपर टाइगर है, मरी हुई चींटी है, बात है ही नहीं। अलग अलग जगह बाबा ने अलग अलग चीजें कही है, तो ये भी एक कारण है लगाओ। पास्ट मेमोरीज से लगाओ, पास्ट मेमोरीज स्मृतियां, हाँ वो पकड़, होल्डिंग नेचर, पकड़ के रखा है, अब तक पकड़ के रखा है, इतने साल हो गए पर पकड़ के रखा है, या किसी और की कोई एक बात, जैसे हमने एक ओपिनियन बना लिया कि ये व्यक्ति ऐसा है, 10 साल पहले उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया था इसके लिए वो ऐसा है, अभी 10 साल हो चुके हैं उसने अपने आप को बदल भी दिया है, परंतु फिर भी हम यही सोचते हैं कि ये ऐसा ही है, उसने तो चेंज कर दिया अपने आप को, पर हमारे मन में वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड आइडियाज लोगों के बारे में। किसी भी व्यक्ति के बारे में आइडिया बनाने के लिए सबसे पहले लंबा समय स्टडी चाहिए उस व्यक्ति या वस्तु की, उसके बाद ही हम ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। तुरंत हमने किसी को देख लिया और फट से एक ओपिनियन फॉर्म कर लिया, चलो इतने समय से ज्ञान में फिर भी इतना भी इनको समझ में नहीं आता, ये हमने पकड़ लिया एक बात, पर उनके जीवन में हजारों चीजें और अच्छी है वो हमने देखी ही नहीं, एक ही बात को पकड़ लिया, तो ये भी एक व्यर्थ का कारण बनता है। तो बाबा और हमारे बीच में एक तो आता है व्यर्थ, फिर आती है निगेटिव बातें संगठन की ही, एक दूसरों की निगेटिव ज्यादा देखने के हमारे संस्कार है। कई सारे जो वर्कशॉप्स होते हैं वैल्यू टीचिंग के, उसमें एक ही कहते हैं कि आपके साथ वाला जो है उसके गुण लिखो, ये बहुत ही मुश्किल काम है, हाथ पेन बढ़ता ही नहीं आगे, अवगुण लिखने को कहो तो फटाफट लिख देंगे कि ये ऐसा करता है, योग में इसको नींद आती है, ये तो बिल्कुल मुरली का चिंतन मनन कुछ नहीं करता है, मुरली कभी सुनते कभी नहीं सुनते, कभी पढ़ते नहीं पढ़ते, धारणा का इतनी है नहीं, बहुत सारे आ जाएंगे। गुण लिखो कहोगे तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा बीके है, बाबा को पहचान लिया, इससे ज्यादा और बढ़ता नहीं कलम, कोई पर्सनल कोई विशेषता बहुत कम, दृष्टि हमारी वो है ही नहीं देखने की, इसके लिए काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो ये, तो व्यर्थ निगेटिव ये सारा हमारे बाबा और हमारे बीच में आता है। दूसरा और एक महत्वपूर्ण बात है, बाबा ने जो खुशी के लिए कहा आप खुश नहीं होंगे तो कब होंगे, हमारी खुशी खत्म करने वाली भी बहुत सारी बातें हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पर वो बातें आती रहती है जाती रहती है, और अंदर ही अंदर सूक्ष्म में कहीं ना कहीं खुशी खत्म होती है, फिर खुश होते फिर दुखी होते फिर खुश होते फिर खुश दुखी होते, तो हमें दुखी करने वाली भी कुछ बातें हैं, वो कौन सी बातें हैं, वो एक तो हमारे घर परिवार से आ सकती है, मित्र संबंधी, घर परिवार, ब्राह्मण परिवार या बाहर के लोग, ये सब तरफ से वो बातें आ सकती है। इसके लिए बाबा ने जो कहा है ना, सबसे मुख्य जो है वो ज्ञान का स्मरण चिंतन करना और अपनी स्थिति को हमेशा ऊपर रखना, नहीं तो ये सारी बातें तो होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कांटों का जंगल है, सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई एक ना एक तो कांटा छुआना ही है, ये नियम है यहां, चाहे यहां की ही बात कर रहा हूं संगठन की, कुछ ना कुछ तो कुछ कहीं कोई ना कोई करेगा ही, और जो करेगा उसको ये भी नहीं पता है कि उसकी वजह से कोई दुखी हो रहा है, आज की मुरली में बोला है बाबा ने किसी को दुख देना स्लोगन संपूर्ण अहिंसा है, कितनी बड़ी बात बोल दी, संकल्प में भी संपूर्ण हिंसा, सॉरी अहिंसा नहीं हिंसा, दुख देना ये हिंसा है, तो हम खुद ही एक लिस्ट बनाएं कि मेरी खुशी इस बात से कम होती है, मेरा बाबा से जो समीपता का अनुभव है अगर ये बात आ जाए तो मैं बाबा से दूर हो जाता हूं, खुद ही अपनी एक लिस्ट बनाएं, खुद ही अपनी दिनचर्या को देखें कि ये दिनचर्या है, इस दिनचर्या में कहां डिस्टर्बेंस आता है, और इसके पहले भी आया है मैंने किस तरह से रिएक्ट किया है, और जिस तरह से मैंने रिएक्ट किया है वो उसको और अच्छी तरह से क्या कर सकता था, जैसे कोई सिनेमा एक्टर्स एक्टिंग करते हैं ना, तो अगर सोचो कि वो अपनी ही फिल्म देख रहे हैं तो सोचते होंगे ना कि ये सीन में और अच्छा कर सकता था, पास्ट की अगर स्मृति आती है तो पास्ट में हम ये काम कर सकते हैं कि वही सीन को देखो और देखो कि मैंने ये किया था, तो अब हम देखें साक्षी होके वही फिल्म को अपनी मूवी को कि इसमें मैं और क्या अच्छा कर सकता था, इस तरह से हम उसको याद करते हैं तो दैट इज गुड, परंतु अगर हम इस रीति से याद करते हैं कि अरे ये ऐसा क्यों हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए था तो दुखी हो जाएंगे, पास्ट अगर आता भी है तो हम ये याद करें कि इसी सीन को इसी ड्रामा को मैं कितना अच्छी तरीके से और कोई मार्ग था क्या जिससे मैं इसको अच्छा कर सकता था, ये हम सोच सकते हैं। कोई भी चीज इस संसार की आकर हमारी खुशी छीन के न ले जाए। बाबा कितने सालों से मुरलिया केवल खुशी पर ही चला रहा है, जैसे कहा ना कोई शिक्षक अगर एक ही टॉपिक पर बार बार बोल रहा है तो जरूर विद्यार्थियों में उस बात की कमी है। भले बाबा बहुत बड़े बड़े सम्मान देते, तुम मेरे दिल के दीपक हो, नैनों के नूर हो, दिल में समाये हुए हो, ये मीटिंग ऐसी है वैसी है, केवल तुम्हें ही प्राप्त है और किसी को मिलती नहीं, ये संगम युग पर ही होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, पर बाद में शिक्षा वही दी है। बाप कहते वाह बच्चे वाह, बच्चे कहते वाह 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 वाह, वो सब तो बातें बोलिए, परंतु शिक्षाएं फिर वही खुशी की है। जरूर संगठन में, जरूर जो सभा बैठी है उनमें खुशी की कमी है। और खुशी एक बहुत बड़ा विषय है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें काम करती है। हमारे संकल्प क्या चल रहे हैं, विचार कितने श्रेष्ठ है, संकल्पों में ज्ञान है या संसार की बातें चल रही है, योग कैसा है, योग की क्वालिटी क्या है, अमृत वेला रोज कितना शक्तिशाली हो रहा है, हमारा जो दिनचर्या है उसमें कहीं स्वार्थ भावना तो नहीं आ रही है, उसमें कहीं नाम और मान की कामना तो नहीं है कि नाम हो जाए मान हो जाए, इस तरह से छोटे भाव तो नहीं आ रहे, वो सब कुछ सम टोटल खुशी मतलब हैप्पीनेस सम टोटल। बाबा ने खुशी को क्या कहा, नरिशमेंट, खुराक है, दवाई है, बीमारी आने नहीं देगी, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव बोथ, बीमारी आने नहीं देगी, ये भी कहा हुआ,
तो बीमार नहीं है
खुश, बीमार खुश जैसी कोई खुराक नहीं, अगर खुशी नहीं तो बीमार। हमने देखा कि कितने सारे मरीज जो आते हैं उनको वास्तव में कोई बीमारी होती नहीं है परंतु दुखी होते, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बीके लंबे समय से है उनकी बात कर रहा हूं, उनमें भी दुख का कारण कोई ना कोई एक पुरानी बात है जिसको उन्होंने पकड़ के रखा है, अब तक उससे छोड़ा नहीं उस बात को, या किसी व्यक्ति को अभी तक माफ नहीं किया है, किसी व्यक्ति को जिसने उनके साथ में बहुत कुछ गलत किया है उसको उसने माफ नहीं किया। हमें हमारे साथ अब तक जो कुछ हुआ है, चाहे हमको लगता है इसने गलत किया, इसने हमारी कंप्लेन कर दी, कोई हमारे विरुद्ध में लेटर लिख दिया, या हमको लगता है कि इसने हमारे बारे में गलत गलत फैलाया, गलत गलत बोला, दूसरों को मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा, ये आत्माएं जो है हमको पता है कि इन्होंने ऐसा किया पर हमने उनको माफ नहीं किया, तो वो जो भाव है वो शरीर की कोई ना कोई बीमारी के रूप में प्रकट होगा, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। इसके लिए बाबा ने कभी मुरली में कहा है, तुम्हारे मन में अगर किसी एक आत्मा के प्रति भी घृणा है तुम संपूर्ण नहीं बन सकते। तो पहले ये भी एक चेकिंग का पॉइंट है कि चाहे अब तक ब्राह्मण बनने के बाद ले लो और अब तक ऐसी कोई आत्मा है कि जिसके प्रति मेरे मन में बदले की भाव है, बदले की भावना है, घृणा भाव है, नफरत का भाव है, अगर है तो उसको खत्म कर दो, उसको माफ कर दो, क्योंकि नुकसान हम अपना ही कर रहे हैं। कितने मरीज कितनी बहनें ऐसे आती है कि जिनके मन में इस तरह के भाव थे, दबी हुई भावना, दबा दिया था, कोई भी दमन जो है वहां पर दुखी होगा, हमारे मन में भाव उत्पन्न तो हो रहे हैं हम उसको दबा रहे हैं, जहां दमन होगा वहां दुख उत्पन्न होता है। जैसे एक उदाहरण, एक बहन है बीच में आए थे बहुत समय पहले, सेंटर की बहन, शायद ऐसा होगा कि भाई उसको बहुत खाने की इच्छा है पर वहां पर अलाउड नहीं है, तो जब भी यहां आती उसको दो दो घंटे में भूख लगती है, उसकी दूसरी बहन साथ में लेके आई थी उसका कुछ करो, हिस्ट्री पूछा तो वो सब पता चला कि वहां फिर उसने अपने आप को थोड़ा एडजस्ट भी कर लिया कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना इस तरह से, मतलब जहां पर भी दमन होगा उसने उस परिस्थिति को एक दूसरे व्यक्ति से लेना चाहिए था, उसको समझ कर संकल्प करके, केवल किसी ने बोल दिया और हमने, जैसे कोई बाहर के लोग यहां आ गए, सोचो एक ग्रुप आ गया और उनको कहा जाए कि सुबह अमृत वेला 4 बजे उठना है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, कैसे उठेंगे, उनके पास ज्ञान ही नहीं है, हम अपने आप कर रहे हैं सब कुछ क्योंकि हमारे पास ज्ञान है समझ है, उनको अगर कहा उनको क्यों, पहले तो प्रश्न है क्यों उठना है, फोर्स हो गया वहां पर और फिर उनकी जो इच्छा और उठ भी गए तो विक्षिप्तता उत्पन्न होगी, सब मैडनेस सब पागलपन, अगर लंबा समय उनको करने लगा है वो, इसके लिए कोई भी बात जबरदस्ती नहीं करो, कोई भी बात को पहले समझो, कोई भी बात, कोई भी श्रीमत, ये क्यों करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्ञान का चिंतन एक छोटा सा है, सबसे पहले तो क्यों लोगों का कहता है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, यहां सुबह एक क्लास होता है रोज, तो कोई एक दूसरे हमारे पास एक डॉक्टर है, उनको कह रहे थे आप क्या करते हो यहां पर, तो उन्होंने कहा हमारा चिंतन करते, तो उन्होंने कहा क्या सुबह सुबह चिंतन, मतलब जैसे पता नहीं क्या वो क्या ऐसा भी होता है क्या तो ऐसे वो मतलब वो पता ही नहीं उसको कि चिंतन भी करना चाहिए, ज्ञान का मनन भी करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो समझ बिना केवल मुरली पढ़ना, गए मुरली सुना मुरली पढ़ना इतना पर्याप्त नहीं है, उसमें बहुत बड़े बड़े राज है एक एक वाक्य में। जैसे आज के स्लोगन वरदान में त्याग तपस्या और सेवा, ये तीनों के बारे में बाबा ने विस्तार किया है, संगठन इससे शक्तिशाली हो जाएगा, बहुत सारी बातें उसमें कही है, परंतु ये केवल एक बार पढ़ लिया या एक बार किताब में लिख लिया और सुन लिया इससे नहीं होगा, बैठ के थोड़ा हमको उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, त्याग अर्थात क्या, कहां कहां त्याग किया जा सकता है। अच्छा मैंने जो त्याग किया कहीं उस त्याग का ही अभिमान तो नहीं है मुझे, जैसे कोई एक व्यक्ति था साधु, तो उसने बहुत सालों पहले, उसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी था, सब छोड़ दिया और साधु बन गया, तो ये न्यूज़पेपर में भी आया था उस समय 30 साल पहले, वो न्यूज़पेपर की कटिंग अभी भी उसके पास है, वो जो छोटी कटिंग, हाँ हर प्रवचन में सबसे बीच में वो पॉइंट आती है कि मैंने अपनी करोड़ों की जायदाद को लात मार दी, एक बार सभा में से किसी ने कहा शायद लात ठीक से लगी नहीं, त्याग तो किया परंतु उस त्याग में भी वो हमको अपना ही चेक करना है, ये दूसरा तो कोई बताने वाला है नहीं, हम त्याग का भी अभिमान, त्याग को समझो क्या है। जैसे ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं चिंतन के लिए कि जैसे आज का वरदान में ये आया करके, तो इसी तरह मुरली जब हम पढ़े कुछ कुछ मुख्य बातें उसमें से उठा ले, जैसे उसमें से उसको अलग कर दिया, वो मुरली अब इधर हो गई, हमने वो बातें उठा ली, अब केवल वो दो या तीन बातें हमारे सामने हैं, अब हम इसका विस्तार करेंगे, तो बुद्धि इससे बहुत कुछ सारी चीजें हो जाएगी, एक तो बुद्धि इसमें बिजी हो जाएगी, फिर हमारे पास टाइम नहीं है बैठकर मौसम के बारे में, भालू के बारे में और किसी के बारे में चर्चा करें, या कौन कौन से डिपार्टमेंट में तब था, अब ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट में क्यों गया, अब नीचे क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, किसने किसके साथ क्या किया, किसका इंचार्ज कैसा है, ये बातों के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी कहां है, क्योंकि हमने लक्ष्य दिया है, आज सुबह हमने मुरली सुनी पढ़ी, उसके बाद में हमने लक्ष्य दिया है कि अपने मन को कि ये एक टॉपिक है, इसको हमें समझना है क्या है, क्योंकि जितना हम गहराई में जाएंगे उतना उसमें डेप्थ है, हर दिन नए अर्थों से उसको हम जानेंगे, ऐसा नहीं कि आज एक समझ लिया, जैसे दादी जानकी को अगर त्याग टॉपिक दिया जाए और कहे कि 10 जगह अलग अलग भाषण करने, एक भाषण ना मिले दूसरे भाषण से, ऐसा होगा वो, कितनी गहराई है उसमें, एक उसको समझाने के लिए अपने जीवन के भिन्न भिन्न एक्सपीरियंस अलग अलग जगह अलग अलग, तो वो विस्तार इतना, मतलब ज्ञान का कितना चिंतन गहराई है, वो तभी होगा जब हमें उसमें रुचि होगी और लंबे समय तक वो किया होगा, हम साधक है सभी, ये भूलना नहीं है, ये हमारी साधना है, हमें साधना करनी है, पुरुषार्थ से भी एक अच्छा शब्द है, भक्ति का शब्द है साधक या साधना, ये साधना है, ज्ञान की साधना कहेंगे इसको, तो ज्ञान को समझना, ज्ञान का कोई टॉपिक स्वयं को देना, उसके ऊपर चिंतन करना, जो अव्यक्त वाणी आती है संडे की या रोज के वरदान या स्लोगन, उनके ऊपर गहराई से चिंतन करना, या साकार मुरली के बीच में कोई तो एक अच्छा टॉपिक आ जाता है, कोई एक अच्छी लाइन आ जाती है, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल, कि जो एकदम वहां से उसको निकालकर या हम डायरी में अलग से लिखे, पूरा के पूरा मुरली लिखने की जरूरत नहीं, कोई कोई मुख्य 2-3 पॉइंट, और फिर उनके ऊपर मनन करना, चिंतन करना, एकांत में रहना, उसके ऊपर थोड़ा और विस्तार करना, स्वयं स्वयं को ही समझाना, ये ऐसा है, तो इसमें बिजी रहेगी बुद्धि, तो इधर उधर की बातों का हमको कोई लेना देना नहीं, टाइम सफल हो जाएगा, बुद्धि और शक्तिशाली हो जाएगी, हमको और इंटरेस्ट डेवलप होगा, कि जैसे आज के वरदान में त्याग शब्द आया, अभी दूसरा है कि बाबा ने आज तक त्याग के बारे में क्या क्या कहा है, फिर हम थोड़ा ढूंढना लगेंगे, ढूंढना चालू करेंगे, खुशी आएगी अंदर से, बहुत अच्छा लगेगा खुशी, जैसे लास्ट संडे की मुरली में था ना, क्या कैसे करे, क्या करे, अब तक भी ये प्रश्न है, तो दूसरों को कैसे संपूर्ण बनाएंगे? अगर क्या करे कैसे करे अब तक है, इसका मतलब मुरली को, इसका रिस्पॉन्ड बाप दादा मुरली में देते हैं, मतलब ये अभी भी प्रश्न आ रहे, मतलब मुरली से प्रैक्टिकल में लाने की शक्ति धारण नहीं की है टीचर से मुलाकात, अगर ये प्रश्न अभी भी है तो सारे प्रश्नों का जवाब उसमें है, केवल हमको उसको बैठकर केवल 5 मिनट में पढ़ लिया और खत्म कर लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा 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 दिन भर में भी टाइम अगर मिलता है, एक बार सुबह सुन लिया, पढ़ लिया और कॉपी में नोट कर लिया, उससे नहीं होता है, ये साधना है। बीच बीच में कुछ छोटी डायरी हो या कुछ लिखा हुआ या मोबाइल में लिखा हो, बीच में निकाला, पढ़ा और फिर रख दिया, फिर थोड़ा सोचा उसके बारे में, तो हमारा टाइम कहीं पर भी वेस्ट ना हो। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है टाइम वेस्ट, ज्ञान और योग और सेवा, ये तीन ही चीजें हैं जिसमें हमको हमारा टाइम देना है। इसके अलावा व्यर्थ चिंतन, परचिंतन, निगेटिव चिंतन, यहां वहां की बातें, यहां वहां की खबरें, बहुत ज्यादा जानकारी हासिल करना, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे कहां क्या हो रहा है, वो इस समय नॉट रिक्वायर्ड। टेलीविजन, सीरियल, ये जो भी है, बहुत लोग इसमें लगे हुए हैं। या भोजन, भोजन भी एक बहुत बड़ी माया है, हर दिन नया नया बनाना और उसमें फिर संकल्प देना, उसमें बहुत टाइम जाना। आप लोग तो सब घर में रहते, मैं यहां वालों की बात भी कर रहा हूं कि यहां रहकर उसमें हमारा टाइम नहीं चला जाए, जो है वो है, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ही कुछ अच्छा बनाओ, बाबा की याद में बनाओ, मौन में बनाओ, ये सब तो बहुत जरूरी है, पर उसमें बहुत ज्यादा टाइम ना चले जाए। या अगर ऐसा हो रहा है कि उसमें ही सारा टाइम जा रहा है, तो फिर पुरुषार्थ क्या है हमारा? हमारा जो योग का समय, वो योग के समय में रहना चाहिए, सुबह का योग, शाम का योग, मुरली, उसके अलावा एक बार मुरली रोज खुद पढ़नी है, खुद पढ़नी है, उसके बाद उसमें कुछ मुख्य पॉइंट नोट करने हैं, नोट करने के बाद उसके लिए हमको कुछ समय ऐसा निकालना है एकांत का, कि जिसमें हम उस पर थोड़ा चिंतन करें। बिना चिंतन करे केवल मुरली सुनना या पढ़ना भी काफी नहीं है, उसके ऊपर चिंतन बहुत 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 जरूरी है, तभी वो हमको याद रहता है, नहीं तो याद कहाँ रहता है? अंदर जाना चाहिए, जैसे वो कोई स्पंज को अगर रख दो, पानी में रखना पड़ता है तो पूरा उसमें पानी अंदर अंदर जाता है, वैसे ही मन को डुबा के रखना होता है ज्ञान में, तो उसमें अंदर जाएगा। और जिस मन में केवल ज्ञान है, जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, उसके लिए योग अति सहज है। बैठते ही जो जो प्रयोग है, वो नए नए प्रयोग हमको याद आते हैं, नए नए प्रयोग करने की इच्छा होती है। योग में अपनी अनुभूतियों को बढ़ाना है। एक किताब मैं सबके लिए कहूंगा जो स्पार्क में अवेलेबल है, अनुभूतियां है सबके पास, तो उसमें कमेंट्री है योग की, वो कमेंट्री उठते ही पहले 5 मिनट वो कमेंट्री पढ़ लो, योग में बैठने से पहले। उसमें एक सोमान है और 2 लाइन है, वो छोड़ दो, सीधा कमेंट्री पे आ जाओ जो बीच का है, वो कमेंट्री पढ़ के हर दिन नई नई कमेंट्री। वो तो एक आधार है, ऐसा नहीं कि वैसा ही करना है, पर उससे हमारी बुद्धि चलने लगती है, उसमें अलग अलग अनुभव है, अलग अलग योग के प्रयोग दिए हुए। योग की कॉमेंट्रीज के ऊपर किताबें बहुत कम है, लगभग है ही नहीं, सारी किताबें ज्ञान के ऊपर है, कॉमेंट्रीज के ऊपर कि उसमें कैसे कैसे। तो वो एक किसी ने लिखी है, स्पार्क में अवेलेबल है वो किताब, तो उसमें से आप जैसे वो तकिया के नीचे ही रख दो वो किताब, उठते ही सबसे पहले बीच में से कहीं से भी खोलो, उतना पढ़ लो, फिर उसको रख दो, और फिर योग में चाहे यहां आते हैं चाहे वहीं करते हैं आपके घर पे, वहां पर भी उसका बहुत अच्छा अनुभव करना है। ऐसा नहीं कि उसमें जो दिया है वैसा ही, उसको और आप मॉडिफाई कर सकते हो और अच्छा बना सकते हो अपने टेस्ट के, अपने हिसाब से। तो योग में भी हमारा अच्छा अनुभव हो, ज्ञान का भी हम रस ले, रस उत्पन्न, केवल आना बैठना और जाना, ये तो बस हम नियम फॉलो कर रहे हैं, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट, उससे उन्नति नहीं होगी। मतलब सबकी दृष्टि में रहेंगे कि भैया योगी है, ये है, वो और हमारी अपनी उन्नति, उन्नति एक दूसरी चीज है, अध्यात्म का मार्ग है ये। इसमें तो बाबा बार बार कहते हैं पोता में रखो, चेक करो, देखो कितने निर्विकारी है, कितने दिव्य गुण धारण किए, विकार तो नहीं है। ये सारी चेकिंग कहाँ होती है? ये मतलब चार्ट बन जाते हैं हर महीने के, वो भी आ जाते हैं, हम लिखते भी है, परंतु हमको ये स्वयं अनुभव हो कि अभी मैं पहले से शक्तिशाली हूं, स्वयं अनुभव हो कि अभी मेरी जो स्थिति है शक्तिशाली स्थिति है, ये रोज अनुभव करना। जो जो बातें ज्ञान और योग के बीच में आ रही है वो सबको माया जानो। बाबा को जानना बहुत मुश्किल है, बाबा से भी मुश्किल और एक चीज है जानना, वो है माया। माया का ज्ञान, माया तो पावरफुल है पर उसको समझ में ही नहीं आती ना, और यहां तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। वो किस रूप से आती है, उसके वस्त्र भी यहां श्वेत वस्त्र है, वो तो समझ में नहीं आती कि यही माया है। पर अगर इंटरनेशनल योग होगा और हमको कोई कहेगा कि भाई चलो कहीं और जाते हैं, मार्केट जाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, बहुत सारी माया है भिन्न भिन्न छोटी छोटी रूप में आती है। तो हमको स्वयं को यह देखना है कि मेरे जीवन में माया कहां है, उसको मैं कैसे हटाऊं। पुरुषार्थ के मार्ग में कौन कौन बाधा है? कोई व्यक्ति बाधा तो नहीं बन के बैठा है? कोई व्यक्ति ही बाधा होगा, ऐसा भी हो सकता है। और हम समझते हैं, जैसे उस दिन भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, कि हम तो जो लोहे की जंजीरें हैं सलाह की, उसको तो तोड़ दिया है, पर जो सोने की है उसको हमने आभूषण की तरह रखा हुआ है, और हमारा हाथ बढ़ता नहीं उसको निकालकर फेंकने के लिए। अच्छे लगते हैं वो, जैसे आभूषण मालूम पड़ते, श्रृंगार है वो, जो भी कहो ऐसा लगता है वो श्रृंगार है, हम उसको नहीं निकाल सकते, ऐसा लगता है वो रख रहे दोस्त। परंतु हो सकता है कि कोई व्यक्ति ही माया है, कोई वस्तु ही माया है, कोई साधन ही माया बन के बैठी है, कोई ना कोई साधन, जिसको हम, हमारे पास अगर किसी ने कहा कि ये माया है तो हम उसको 10 बातें सुना सकते हैं उसके बारे में कि ये कितना जरूरी है। हम इतने तर्क हमारे पास है, इतनी लॉजिक हम दे सकते हैं ये बहुत जरूरी है, परंतु शायद ऐसा तो नहीं कि वही माया है। इसके लिए स्व की जो चेकिंग है वो सूक्ष्मतम सूक्ष्म होने के लिए बहुत गहरे उतरना पड़ेगा। इसमें केवल लेक्चर सुनने से भी नहीं होगा, मुरली पढ़ने से भी नहीं होगा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है एक मौन और एक एकांत। जितना हो सके 8 बजे तक, 8:30 बजे तक या 9 बजे तक मौन ही धारण करके रहे, जितना जरूरी है। अगर जरूरी है, इमरजेंसी है तब तो बोलना ही है, परंतु लक्ष्य रखना है कि सुबह का समय हमारा मौन में ही रहे। मुरली सुन लिया वो भी मौन में, शाम का जो समय है उसमें भी भोजन हो गया या 8 बजे के बाद हो सके तो फिर से मौन सोने तक, उसमें फिर न्यूज़पेपर, उसमें फिर टेलीविजन, उसमें फिर मोबाइल, उसमें फिर इंटरनेट, ये सब चीजें थोड़ा जितना हो सके इससे दूर ही रखना है। बाबा ने कभी कहा है अव्यक्त संदेश में, ज्ञान सरोवर ने कभी एक बार गुरुवार के भोग संदेश, क्योंकि बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा चले गए, अव्यक्त बाप दादा का संदेश था, जितना जरूरी है उससे कहीं अधिक चले गए। तो ये सब जो है हमारा टाइम ले लेता है, संकल्प चलते हैं, हजारों ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के, इतने ग्रुप्स है उसमें आना जाना चालू ही रहता है, कुछ ना कुछ भेजते ही रहता है कोई ना कोई, कोई गुड मॉर्निंग भेजेगा, कोई कुछ भेजेगा, कोई कुछ भेजेगा, कोई कुछ भेजेगा, देखा उसको संकल्प तो चलेंगे ना कुछ तो संकल्प चलते ही। ये सब भी एक रीति से अगर देखा जाए तो हमारे और बाबा और ज्ञान और योग के बीच में ही आ रहा है। हमारा चित्त फोकस्ड हो ऑन ज्ञान योग, ज्ञान योग, और फिर हमारा जो कर्म है, कर्म से संबंधित जो जो बातें हैं वो तो करनी है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना है, वो करना है, बस ये तीन चीजों में ही हमारी बुद्धि लगी हुई है। और जितना हो सके हमारे पास ज्ञान की अच्छी अच्छी किताबें हैं इधर, हमारा एक पर्सनल पुरुषार्थ ये भी हो कि हम अपने को बिजी रखें कुछ अच्छा पढ़ने में, हमारी भी किताबें, कोई संसार की भी कुछ अच्छी किताबें हैं, जो भी धारणाओं की किताबें, बाहर में भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें, तो वो बुक रीडिंग ये भी अगर देखा जाए यज्ञ में बहुत कम है। सब लोग क्लासेस सुनना उस पर ज्यादा ध्यान देते, क्लासेस सुनना वो ठीक है पर फिर भी वो सुनना ही हुआ। एक होता है पढ़ना, पढ़ने में और ज्यादा अधिक एकाग्रता चाहिए। सुन तो आप चलते फिरते भी सकते हो पर वो भी जरूरी है, वो भी करना है, सुनना भी है परंतु पढ़ना भी है। अपना एक अगर संगठन है उसमें कुछ पढ़ रहे हैं वो अलग, पर हमारा पर्सनल अपनी एक रीडिंग चालू रहनी चाहिए कुछ ना कुछ अच्छी। पार्क की किताबें हैं, हमारे जो ये क्या नाम है इनका, महेश भाई अकाउंट्स के, उन्होंने भी बहुत सारा संकलन किया है किताबों का, बहुत सारा। एक प्रश्न उत्तर नाम की किताब है, इतनी मोटी है प्रश्न उत्तर, उसमें ज्ञान के गहरे गहरे प्रश्नों के उत्तर उन्होंने चिंतन और बाबा के कोटेशन किया है, सब जगह कोटेशन, ये मुरली 21-22 किताबें है, छोटी छोटी है, कोई कोई बड़ी है, तो वो भी चिंतन बहुत अच्छा है। अकाउंट्स सो डीप चिंतन, बहुत बहुत गहरा चिंतन है, तो उनकी 21 किताबें है लगभग टोटल, और अलग अलग टॉपिक्स है, मतलब सूक्ष्म वतन के बारे में प्रश्न, एडवांस पार्टी के बारे में प्रश्न, तो वो सारा चिंतन ही है एक रीति से अगर देखा जाए। अगर आत्मा उसमें बिजी रहती है ना तो व्यर्थ आने का संभावना बहुत कम हो जाता है। ये एकदम इजीएस्ट वे है मुझे लगता है। अगर किसी ने किया है चिंतन तो हमारा भी कर्तव्य है उसके चिंतन को हम सुने पढ़े और फिर अपना चिंतन डेवलप करें। वो रॉ मटेरियल है जैसे, उससे हम हमारा चिंतन होना चाहिए अच्छे से अच्छा, क्या हम चिंतन कर सके अच्छे से अच्छे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प। अगर हम किसी को कहें कि भाई चिंतन करो, लोग कहते हैं हमारा तो चिंतन ही नहीं होता है, आज की मुरली में बाबा ने बोला है, बोलो तो बोलते हमारा निकलता नहीं, बाबा ने खाने के लिए तो मुंह चलता है, खाने के लिए चलता है, वो कुछ दिन पहले भी मुरली में था, घर में रड़िया मारने के लिए तो मुंह खोलते हो, ज्ञान सुनाने के लिए मुंह नहीं खुलता है। अगर हमको देखो, हम बोलते ना हमारा चिंतन, किसी को बोलो भाई संतुष्टता के ऊपर चिंतन करके, अरे बाप रे बिल्कुल दिमाग भारी हो जाता है चिंतन करते ही। अच्छा किसी ने कुछ कह दिया 10 बजे रात को, रात भर सोचेंगे उसके बारे में, अच्छा ये ऐसा किया है इसने, इसके पहले भी ऐसा ही किया था, ये मेरे साथ ही नहीं दूसरे दिन और कोई, तुम्हारे साथ भी किया था क्या, अच्छा ये ऐसा ही है, उसका बहुत विस्तार हम अच्छा कर सकते हैं, बहुत चिंतन ये है चिंतन की शक्ति। तो चिंतन की शक्ति ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि मेरे पास है नहीं, चाहे कोई भी हो सबके पास है, केवल उसको चैनलाइज करना है, दिशा देनी है, इच्छा चाहिए ना, इच्छा भी तो चाहिए, इच्छा ही नहीं है तो कहां से होगा, वेर देर इज अ विल देर इज अ वे, जहां चाह है वहां राह है। चाह उत्पन्न करो कि मुझे समझना है सब कुछ, इस ज्ञान को समझना है अच्छे से समझना है, योग में भी योगी बनने का संकल्प है, सबसे पहला तो प्रश्न ये है, चाहते हैं बनना नहीं चाहते हैं, बहुत ही कड़वा सत्य है, नहीं चाहते, क्योंकि योगी बनना उसमें बहुत सारा त्याग करना पड़ेगा, जो अभी हम एंजॉय कर रहे हैं, जो चर्चा है डिस्कशन है संसार का, बड़ा अच्छा लगता है। बाबा ने कभी कहा जितना जो समाचार जितना ज्यादा दिलचस्प वो उतना व्यर्थ, 95 की अव्यक्तवाणी है, जितना जो समाचार जितना दिलचस्प इंटरेस्टिंग जितना है, और क्या हुआ, और क्या हुआ, वो उतना ही व्यर्थ। ब्राह्मण संसार समाचार कहां क्या क्या हो रहा है, नीचे से कोई आता है शांतिवन से, एक ही दिन में पूरा चक्कर लगा के आपके पास आ जाता है, आप यहां रहते आपको पता ही नहीं यहां ये हो रहा है, और अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करते कि देखा हमने एक चक्कर लगा दिया महीने में और सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, और यहां रहने वाले इनको पता ही नहीं, मूर्ख हो गए ना हम करना क्या है, बात ये है, अच्छा बात है नॉलेज रखा है बहुत अच्छी बात है, पर क्या ज्ञान योग में उससे उन्नति होगी, वो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कॉजेज पीसलेसनेस, टू मच इन्फॉर्मेशन, ये स्लोगन लिखा था कहीं पे, टू मच इन्फॉर्मेशन कॉजेज पीसलेसनेस, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए हमको, नॉलेज चाहिए, नॉलेज भी नहीं विजडम, उसके लिए तो खुद ही करना पड़ेगा कुछ। अच्छा हमारे पास बहुत बड़ी समस्या, हम किसी के पास गए, हमने अपनी समस्या सुनाई, उन्होंने हमको हल भी बताया 2-3, फिर भी उससे समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है, वो सॉल्व इधर से ही होगी। हमारे पास कोई एक प्रश्न है, हमने बहुत अच्छा क्लास सुना पवित्रता के बारे में, बहुत अच्छा लगा, उससे पवित्रता आने वाली नहीं है। पवित्रता इधर से ही आएगी, संकल्प से ही आएगी। एकांत में जाना पड़ेगा, सॉलिट्यूड में जाना पड़ेगा, मौन में जाना पड़ेगा। अध्यात्म में मौन और एकांत, एकांत अर्थात वो बाबा वाला, बाबा जो एकांत कहते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक के अंत में खो जाना, वो बहुत ऊंची स्टेज है। स्थूल एकांत वो फर्स्ट स्टेप है। मौन अर्थात पहले मुख का मौन, मन का मौन तो बहुत आगे की स्टेप है, पहले इधर। इसको अगर बंद कर दिया ना, इसको अगर कंट्रोल कर लिया, उसमें दो है, एक जीभ और मुंह, तो 95% सारा हमारे वश में हो जाएगा। ये दो अगर कंट्रोल कर दिया तो, जीभ, जीभ में है टेस्ट, मुंह में है बोलना, ये दो कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय जिसको कहेंगे, इसको अगर वश में कर लिया तो सब अपने आप आ जाएगा। जितना जरूरी है उतना ही। इसीलिए बाबा कभी कोई स्लोगन है ना, साइलेंस जो है वो गोल्ड है, पर डायमंड क्या है? स्पीच सिल्वर, साइलेंस गोल्ड, और डायमंड कंट्रोल्ड स्पीच, वो मौन के भी ऊपर की अवस्था है। कंट्रोल्ड, जितना चाहिए बस उतना बोला और मौन। हाँ, तो बैलेंस लाना है और अपने आप को ही देखना है, बस ये पुरुषार्थ ये एक ही है। ज्ञान सब जगह से लेना है, किताबों से, क्लासेस से, परंतु चिंतन खुद का चाहिए, मूल्यों से, अव्यक्त मूल्यों से, साकार मूल्यों से, सब जगह से। परंतु जब तक हम बैठ के उसके ऊपर थोड़ा टाइम नहीं देते, चिंतन नहीं करते, वो नहीं होगा। कई लोगों को क्लासेस बहुत ज्यादा सुनने की ये रहता है, क्लासेस ही सुनते रहते हैं, परंतु कितना भी सुनो, सुनना सब कुछ नहीं है। अभी जो सुना है रुको, पॉज करो। अगर कोई क्लास भी सुनते हो, जैसे कोई क्लास सुन रहे हो, कोई दादी का क्लास सुन रहे हो, पॉज करो, लिखो पॉइंट्स, फिर चालू करो, फिर पॉज करो, फिर लिखो, फिर पॉज करो, फिर लिखो, फिर ये जो लिखा है अभी पॉइंट्स, इसको पढ़ो, पढ़ लिया, इसको अभी बाजू रखो, फिर वो क्लास सुनो चलते फिरते, फिर वो सुना, फिर वो पक्का होगा। उनके विचार हमारे विचार बन जाए, उनके विचार हमारे विचारों में मिक्स हो जाए, अव्यक्त वाणी के जो थॉट्स है वो थॉट्स वहां से निकल जाए और हमारे विचारों में समा जाए, केवल हमारी डायरियों में न रह जाए। उसके लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प चाहिए, ये मुझे करना है। और जो ये करते हैं वही शक्तिशाली होते हैं। नहीं तो हम देखते हैं कई लोग कितने सालों से ज्ञान में है, थोड़ा सी भी बीमारी आ गई कि पूरा हिल जाते हैं। एक कुमार जो नीचे कई सालों तक सेवा की, कई सालों तक दिन रात सेवा की, जब बीमार पड़े ऊपर थे, कई सालों पहले की बात है, तो ये संकल्प आने लगे समर्पित आत्मा पर। संकल्प क्या आने लगे? अभी अभी अगर मैंने शादी कर ली होती तो आज मेरी बीबी होती और बच्चे मुझे देख रहे होते, क्योंकि उन्होंने कभी ज्ञान और योग को समय ही नहीं दिया। सारी बुद्धि किसमें लगी रही? भागदौड़ में, सेवाओं में। ऐसी सेवा ना करो कि जिसमें ज्ञान योग ही छूट जाए। उससे आपको प्रशंसा तो मिलेगी, नाम तो होगा, पर स्थिति नहीं होगी, क्योंकि वो सेवा करते करते जिसमें ज्ञान योग नहीं, वहां टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है एक दूसरे से। बहुत सारी चीजें होती है, नाम मान शान की इच्छाएं उत्पन्न होती है वहां पर, मेरा नाम हो जाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सारा उत्पन्न हो जाता है वहां। इसके लिए सेवाएं भी कर, सेवा हमारा लास्ट है सब्जेक्ट, इसको नहीं भूलना है। त्याग, तपस्या, सेवा, आज का वरदान भी सेवा लास्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा लास्ट है, और सेवा तो परिणाम है हमारी ऊंची स्थिति का। हमारी ज्ञान योग अगर श्रेष्ठ है तो सेवा स्वतः ही होगी, हमको भागना नहीं पड़ेगा उसके पीछे, वो स्वतः ही होगी, वो इट्स परिणति, रिजल्ट है वो हर चीज का। इसके लिए हमारा फोकस ज्ञान के ऊपर और योग के ऊपर, लक्ष्य रखना है कि जो रोज मुरली चल रही है उसको हम बहुत अच्छी तरह से धारण करें, एक, और हमारा जो अमृत वेले का और शाम का योग है हर दिन, उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी से अच्छी हो जाए, उसमें फिर नींद का असर कम से कम हो, या हो ही नहीं फिर धीरे धीरे, तो खत्म ही हो जाए नींद। विश्व को जो हम सकाश दे रहे हैं वो बहुत अच्छी सकाश दे, आत्माओं से बात करना, आत्माओं से रूहरियान करना, ये सब हमारा अच्छा हो, तभी अंदर में संतुष्टता आती है। नहीं तो इस ज्ञान योग के मार्ग में, ये ब्राह्मण जीवन में अगर कोई पुरुषार्थ नहीं करता है तो अंदर से दिल हमेशा खाता रहेगा, ऊपर से भले दूसरों को कुछ भी दिखाए, पर अगर श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं चल रहा है अंदर में एक ये रहेगी, चुभन रहेगी कि हम वो नहीं कर रहे जो बाबा चाहता है। और कोई प्रश्न है आपका? हमारे पास और 10-15 मिनट है तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं।
जैसे बाबा बार बार रोज चार्ट अपन कैसे रखेंगे? कितना समय किया?
वो बहुत मुश्किल है वो चार्ट। इसके लिए मैं जो करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, वो कि एक तो होता है चार्ट रखना, दूसरा एक होता है डायरी लिखना। चार्ट हम रखे वो बहुत अच्छा अच्छी आइडिया है, पर वो भी चार्ट हम क्या करते हैं, किसी और का बनाया हुआ होता है। हम अपना चार्ट खुद बनाए सबसे पहले तो, एक होता है प्रिंटेड लगा दिया कहीं या किसी ने भेज दिया कि ये एक महीने का चार्ट है, एक से लेकर 30 तारीख तक यहां मधुबन में बने हुए हैं ऐसे चार्ट, वो भी अच्छा है फॉलो करना। पर क्या है, मन स्वीकार नहीं करता इन बहुत सारी बातों को, उसको नया नया चाहिए कुछ। कितना याद रहा, 10%, 20%, 50%, वो एक जैसा हो जाता, रूटीन हो जाता है फिर। एक तो ये, दूसरा मैं कह रहा था कि हम अपना चार्ट खुद बनाएं और उसमें क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए वो हम खुद ही डिसाइड करें, जैसे हमारी ड्यूटी क्या है उस अनुसार। आज मेरी जो सेवा थी 9 से 12 बजे तक, उसमें मेरी स्थिति कैसी रही, उसमें कैसी रही, उसके भी हम जो कंपार्टमेंट्स है वो खुद बनाएं। कैसी रही, श्रेष्ठ रही, व्यर्थ कितनी बार आया, कैसा व्यर्थ है, किस प्रकार का व्यर्थ है, हम अपना चार्ट खुद बनाएं एक तो। दूसरा, तीसरा, हम अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद ही सेट करें। हमको पता है ये टाइम पे हम थोड़ा फ्री रहते हैं, ये टाइम पे हमारी ड्यूटी हो गई, हमारा जाने का समय है, बस वो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल का पीरियड हो सकता है, वो चाहे 1 बजे हो, 2 बजे हो, 12 बजे हो। जरूरी नहीं कि वही ट्रैफिक कंट्रोल हम फॉलो करो, वो हो सकता है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल के समय हम बहुत ही बिजी है, हम छोड़ भी नहीं सकते, सामने कोई बैठा है तो कोई डिस्कशन, कोई मीटिंग कहीं चालू है, हम ये भी नहीं दिखा सकते कि भाई हम ये कर रहे हैं। उनको भी थोड़ा लगता है, मतलब कर सके तो करो पर कुछ भी चीज दिखावा ना हो जाए। जैसे वो शांतिवन में हमने एक बार देखा, जब बाबा से मिलने आते तो बड़े सब योगी के इसमें रहते, वो आवेश में भोजन करते करते भोजन यहां पे और ट्रैफिक कंट्रोल गीत बज गया, तो 5 मिनट इधर ही, वो फिर दूसरों को देख रहे क्या कर रहे यार रोड के बीच में ही खड़े, उधर से कार आ रही है और रोड के बीच में ही वो बजा रहे उधर से हॉर्न, उसको भी डांट के बोलो कि ट्रैफिक कंट्रोल चालू है। तो ये कोई ट्रैफिक कंट्रोल, ऐसा ट्रैफिक कंट्रोल से क्या होने वाला है? ट्रैफिक कंट्रोल का अर्थ ही क्या है? विचारों का ट्रैफिक कंट्रोल करना, विचारों को रोक देना। तो जरूरी नहीं है कि जो ट्रैफिक कंट्रोल बना है वही हम फॉलो करें, वो करें बहुत अच्छा समय है तो, पर अगर हम उस समय बिजी है तो हम 1 घंटे बाद उसको शिफ्ट कर सकते हैं, आधे घंटे बाद उसको शिफ्ट करते हैं, तो अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद बनाना। फिर बात है चार्ट की। अभी चार्ट में एक चार्ट ऐसा भी है कि बाबा को सब बताना, सुबह तो चार्ट लिखना नहीं है, दिन भर में तो वैसे तो बाबा ने कहा सारे दिन भर चेकिंग होती रहे, पर मुख्य दो समय है, एक है सेवा खत्म हो गई शाम का समय और रात को सोने से पहले, ये दो टाइम है जिसमें हम अपना चार्ट बताने की बात कर रहा हूं मैं, लिखने की नहीं। बाबा को सुनाना, केवल अपनी दिनचर्या सुनाना, जैसे शाम का सेवा हो गई सब हो गई, योग चालू करने से पहले अपने हमने जो कुछ किया, सुबह अमृत वेले कितने बजे उठे, योग कैसा किया, फिर कौन कौन मिला, फिर हमने क्या क्या कहा, कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, इसकी एक सूक्ष्म चेकिंग, स्थूल सूक्ष्म दोनों, और बाबा को सुना के थोड़ा हल्के हो जाओ और फिर योग की शुरुआत। एक शाम का पीरियड और फिर रात का पीरियड जब हम अपने घर में या कमरे में होते हैं, वो जो पीरियड है उसमें फिर बात आती है लिखने वाली। शाम को पर दो बार हमको चार्ट देना है, एक तो शाम का और एक रात का। अभी जो रात का है उसमें लिखने की जो बात है, उसमें एक दूसरी एक बात जो कर सकते हैं, जो मैं करता हूं, अपनी ही डायरी लिखना, उसमें दिनचर्या भी आएगी, अगर कोई नई बात हुई है तो वो बात आएगी, अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो वो आएगी, अगर कुछ गलती किया है तो वो आएगी, और वो बात जैसे वो जो डायरी है जैसे एक लेटर के रूप में है बाबा को वो। और फिर अगर आप अपना चार्ट बनाया हुआ है या यहां से भी जो आता है मधुबन से, उसको भी आप फिल करो और अपने रीति से अपना इसमें सेट करो दिनचर्या। जैसे मुझे याद है जब बहुत पहले मैं इधर हॉस्पिटल में था 2003 में, तो कभी मॉर्निंग ड्यूटी रहती थी, कभी इवनिंग, कभी नाइट। अभी ऐसी ड्यूटीज में कहीं फिक्स है ही नहीं, मतलब एक दिन मॉर्निंग है, चलो उसमें तो सुबह का टाइम मिल गया, जिस दिन इवनिंग है सुबह का टाइम मिल गया पर इवनिंग का गया, रात के इसमें तुम सुबह का सब कुछ गया, पेशेंट चालू रहते आना। तो उसमें मैंने ऐसा बनाया था कि सुबह की ड्यूटी जब रहे तो शाम में क्या करना है, इवनिंग ड्यूटी है तो सुबह का टाइम कैसे सफल करना है, नाइट है अभी जिसकी भी नाइट ड्यूटी होती है उनका क्या होता है, आज नाइट है तो आज रेस्ट करना है, ठीक है आज रेस्ट की, अभी दूसरे दिन क्योंकि नाइट की तो अभी रेस्ट करना है, वो इतनी जबरदस्त माया है ये, क्योंकि आज नाइट करना है तो थोड़ा सो जाओ आज थोड़ा ज्यादा 5-6-4 घंटा सो जाओ क्योंकि नाइट करनी है उसमें जागना है, अभी क्योंकि नाइट की तो दूसरे दिन फिर संकल्प है कि अभी पूरा सोना है शाम तक, मतलब पूरा समय सोने में जाता है कई लोगों का जिनका इस तरह की ड्यूटी होती है। इसमें फिर ये करना है कि क्या क्या कर सके, नाइट है तो इधर का दिन और इधर का दिन दो दिन होते हैं, इसका अपना एक सेट करना टाइम टेबल, मॉर्निंग का इवनिंग का नाइट का, वो मैंने तब अपना सेट किया था। अभी आपकी जैसी ड्यूटी है जिस प्रकार की सेवा है उस अनुसार अपना टाइम टेबल खुद सेट करना है, उसमें आप फिर छोटी छोटी बातें आ जाएगी, जैसे आप थोड़े बाहर रहते हो वहां से यहां आने तक का समय मुरली सुनने के लिए या क्लास के लिए या योग के लिए, ये जो समय है गाड़ी में आते हैं या पैदल आते हैं, पैदल आते हैं तो उसमें क्या क्या करें, कोई एक टॉपिक निकल के ही ले ले घर से कि ये टॉपिक है और उसका चिंतन करते करते यहां तक पहुंचे, टाइम हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए बस, कोई भी टाइम छोटे से छोटा भी टाइम, ऐसा नहीं कि किसी के साथ बैठ गए और 2 घंटा बस बातें ही कर रहे, उसमें सब व्यर्थ ही व्यर्थ आता है। वो दत्तात्रेय होते हैं दिखाए ना गुरु, उसके 24 गुरु है, उसमें से एक गुरु एक लड़की है, वो उसके द्वार के सामने खड़ा रहता है तो वो धान कूटती रहती है, पर क्योंकि बाहर मेहमान आए हुए रहते उसके हाथों में इधर चूड़िया होती है इधर चूड़िया होती है, वो जब कूटती है तो आवाज आता है तो वो इधर की एक चूड़ी निकाल के रखती है, फिर भी आवाज आता है, फिर इधर की एक रखती है, फिर इधर की एक रखती है, फिर इधर की एक रखती है, इधर 2 बज जाती है इधर 2 बज जाती है, फिर कूटती है फिर भी आवाज आता है, फिर लास्ट में ये भी निकाल के रखती है, अब एक चूड़ी इधर एक चूड़ी अभी आवाज नहीं आता है। तो दत्तात्रेय कहते हैं इससे मैंने बहुत अच्छा पाठ सीखा है कि अकेले ही रहना चाहिए सन्यासी को, अकेले ही रहना चाहिए, अगर किसी का साथ लिया तो आवाज तो होगा। अभी इस ज्ञान मार्ग में अकेले रहना अर्थात संगठन में है परंतु फिर भी अकेले, घर में है परंतु फिर भी अकेले, ये प्रैक्टिस करनी है। कोई साथ में परंतु ऐसे रह रहे जैसे कोई लेना देना नहीं है, इतना डिटैच, मन से डिटैच, सेवा भी कर रहे हैं उनकी, बच्चे हैं बच्चे की संभाल भी कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं फिर भी डिटैच, ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। पर लक्ष्य रखेंगे तो होगा, अगर लक्ष्य ही नहीं है तो नहीं होगा। इसके लिए बैठकर व्यर्थ की बातें करना ये सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है, घंटे चले जाते हैं। बाबा ने जब कहा है कि एक एक सेकेंड एक एक मिनट कितना मूल्यवान है ब्राह्मण जीवन का, और वो ऐसे ही हम बाबा थे, इसको सबसे पहले स्टॉप करना जहां जहां टाइम, अगर कोई ऑफिस में है, ऑफिस में ऐसे भी होता है कि हमको बाहर के लोगों के साथ काम करना पड़ता है, ऐसा बहुत जगह है, यहां पर भी है वहां पर भी है, जो बाहर के लोग हैं उनके साथ में काम करना वो मुश्किल काम है एक, वो पर वो भी हमको अपने उसमें भी सेट करना है, उनके साथ में रहते हुए भी हमारा जो बीके लाइफस्टाइल है वो वैसा ही रहना चाहिए। बहुत ज्यादा उनके ऊपर क्रोध करना चिल्लाना डांटना इस सबसे हमारी स्थिति खराब होगी, उनका तो कुछ नहीं होने वाला और सुधरेंगे भी नहीं, वो दूसरी बात है। जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करना है बाहर के वातावरण में, तो चार्ट अपनी ही दिनचर्या लिखना, उसमें फिर आप लिखते लिखते वो भी पॉइंट, मतलब जस्ट सोने से पहले वो एक कि ऐसा 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 याद किया कितना परसेंट या अमृत वेला कैसा रहा, शॉर्ट में तो हम लिख सकते हैं, और हर दिन अलग अलग रीति से लिखना है, एक ही अगर रहा ना तो 4 दिन 10 दिन लिखने के बाद वो छूट जाता है। अगर चलो कभी चार्ट न भी लिखा, अभी जैसे मैं डायरी रोज लिखता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कोई चार्ट की कोई पॉइंट नहीं आती उसमें, पर वो लिख के भी मुझे ठीक लगता है, मतलब एकदम नहीं लिख रहे कुछ वो नहीं अभाव नहीं आता है। और कोई प्रश्न, मतलब प्रश्न आता चर्चा के लिए विषय, कल की अव्यक्त वाणी जो है उसके लिए मैं कुछ 2-3 बातें बता देता हूं। अभी अव्यक्त वाणी है, उसको सबसे पहले तो बाबा ने उसमें अशरीर होने की विधि बताई है। तो वो अशरीर होने की विधि में हम ये सोचे कि और क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। मुरली जो है उसको एक बार पढ़ना, मुख्य मुख्य पॉइंट्स निकालना, फिर लिखना, बार बार पढ़ना, और फिर उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना। जो भी अव्यक्त वाणी है उसके ऊपर अच्छे से चिंतन करना, क्योंकि वो हम एक वाणी दूसरी बार तो पढ़ते नहीं। कभी पढ़ते हैं आज की मुरली, कल पढ़ते हैं कोई? कभी नहीं, बहुत कम। हो गया हो गया, काम खत्म, क्योंकि दूसरा आ गया माल। इसके लिए हमारे पास 24 घंटे ही टाइम है। एक मुरली का अध्ययन, मनन, चिंतन करने के लिए केवल 24 घंटे का टाइम है। उस 24 घंटे में ही जो करना है उसके साथ, क्योंकि नेक्स्ट वो बासी हो जाती है जैसे हमारे लिए। कोई अगर दे भी ना एक हफ्ते पहले की मुरली, ये लो, कौन पढ़ेगा उसको? केवल आज का जो है बस वो आज का ही है। तो इसके लिए उसको पूरा उसका रस लेना है। केवल इधर बैठ के सुनने से कुछ नहीं होता। बाबा ने कहा गए मुरली सुने और आगे यह है पुरानी चाल, साकार महावाक्य है। गए मुरली सुने और आ गए, यह है पुरानी चाल। पुरानी चाल नहीं, अभी नई चाल चाहिए। तो नई चाल है उसका मनन। तो ये जैसे कल की मुरली आने वाली है, थोड़ा टाइम देना है, एकांत में बैठना है। छत अगर है तो छत पर बैठना है, घरों में रहते हैं तो रहती है छत। एकांत में बैठ के उसका थोड़ा एक या दो बार अवलोकन चिंतन करना, ताकि वो पक्का हो जाए। ये सोचो कि ये बाद में नहीं आने वाली हमारे हाथ में, बस एक ही टाइम है, ये आज का ही दिन है इसका अध्ययन करने का। फिर तो हम तो छोड़ देते हैं ना उसको, कहां पढ़ते हैं कोई। पिछले संडे की मुरली अगर दू तो पढ़ोगी कल? यही तो इतना भारी है चार पेज का, वो कहां पढ़ेंगे पिछले। इसके लिए ये जो मिसिंग लिंक है उसको पकड़ के उसको पूरा करना, ठीक है।